Jairadha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tiravana Sari Yamuna Tira Bana Sari Jairadha Madhava Kunja Vihari Jairadha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Bana Chari Yamuna Tira Bana Chari Jairadha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर सूत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्रीदास ठाकुर की ताई गौर प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तेर भवति नैष्ठिके श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 22 तावंग्र जुग्मम अनुकृष्टरे श्रीपंतो तावंग्र जुग्मम अनुकृष्ट शरी श्रीपंतौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु तन्ना दर्हिष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम् तन्ना दर्हिष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम् मुग्धा प्रभीतवत् उपयतुरन्ति मात्रो मुग्धा प्रभीतवद् उपयतुरन्ति मात्रो तावंग्र जुग्मम् अनुष्कृत्य शरी श्रीपंतौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु तन्ना दर्हिष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम् मुग्धा प्रभी तवद उपयतु अंति मात्र तावं घृजुग्मं अनुष्कृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषो तन्नादहृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम् मुग्धा प्रभी तवद उपयतु यन्ति मात्र पढ़िए मदन सुंदर प्रभु कृष्ण प्रभु सबदार तो कृष्ण तथा बलराम दोनों आंघ्रिजुग्मम अनुकृष्य अपने दोनों पांवों को घसीटते हुए सरीसृपों की तरह रेंगते घोषा प्रघोष रुचिरम अपने घुंघरुओं से आवाज करते जो अत्यंत मधुर थी ब्रज कर दमेशु ब्रजभूमि की धरती पर गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ में तदनाद उन घुंघरुओं की आवाज से हृष्ट मनसौ अत्यंत प्रसन्न होकर अनुसृत्य पीछे पीछे चलते हुए लोकम अन्य लोगों को मुग्धा मोहित होकर प्रभीतवत उनसे बारंबार डरते हुए उपेयतु तुरंत लौट आए अंतिमात्र अपनी माताओं की ओर अनुवादम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद की। जब कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल ब्रज भूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे तो उनका रेंगना सरीसृपों के रेंगने जैसा लगता था और उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य लोगों के घुंघरुओं की आवाज़ से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हों। किंतु जब वे यह देखते कि दूसरे लोग हैं तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं जसोदा तथा रोहिणी के पास लौटाते। तात्पर्य, ब्रजभूमि में रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम घुंघरुओं की आवाज़ से मुग्ध हो जाते थे, इसे कभी कभी अन्य लोगों के पीछे पीछे लगते। उन लोगों को कृष्ण तथा बलराम का रेंगना अत्यधिक आनंद देता, अतः वे चिल्ला पड़ते, ओह देखो ना, कृष्ण तथा बलराम किस तरह रेंग रहे हैं। यह सुनकर कृष्ण तथा बलराम समझ जाते कि वे लोग जिनके पीछे वे जा रहे हैं उनकी माताएं नहीं हैं, अतः वे अपनी असली माताओं के पास लौट आते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम का रेंगना पड़ोस के लोगों के साथ साथ माता जसोदा तथा रोहिणी और दोनों बालकों को भी आनंद प्रदान करता था। अनुवाद दोहराएंगे, कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल ब्रजभूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे तो उनका रेंगना सरीसृपों के रेंगने जैसा लगता था और उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। अन्य लोगों के घुंघरुओं की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हों। किंतु जब वे यह देखते कि वे दूसरे लोग हैं तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं जसोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते। तो इस अध्याय में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। परीक्षित महाराज भगवान की बाल लीलाओं को सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित थे कि भगवान जो जगतपति हैं, जो अखंड अनंत ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, गोकुल में विशेष करके नंद महाराज के आंगन में अपनी बाल लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। जिन बाल लीलाओं को देख करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो ब्रजवासियों की बात क्या है। नंद महाराज ब्रजवासी तथा पड़ोस की स्त्रियां भगवान की बाल लीलाओं को देखकर बहुत मुग्ध हो जाते थे, उनको बहुत प्रसन्नता होती थी, बहुत खुश होते थे, उस सौभाग्य का वर्णन करते थे। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी खुद करें कि नंद महाराज का क्या सौभाग्य है और इन ब्रजवासियों का कि जिनके आंगन में जगत ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं भगवान खेल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। अरे देखो भला, इन ब्रजवासियों और नंद महाराज का कितना बड़ा भाग्य है कि जिनके आंगन में श्री कृष्ण लौट रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी कीचड़ में, धूल में, उनका सारा शरीर गोबर और गोमूत्र से सना हुआ है, फिर भी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। इतना होने के बावजूद ही भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं और उनके पाँव में जो घुंघरू हैं उसका बहुत मनमोहक आवाज होता है। कृष्ण बलराम के पांव में घुंघरू लगे हैं और उससे आवाज होता है। जब दोनों ठुमक ठुमक कर चलते हैं नंद महाराज के आंगन में तो बहुत सुंदर मनोहारी दिव्य आवाज होता है। तो इन लीलाओं को सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान भी उन लीलाओं से आनंदित हो रहे हैं, कृष्ण बलराम स्वयं भी आनंद का अनुभव करते हैं। जब अन्य ब्रजवासी या पड़ोसी माताओं के पांव में जब घुंघरू बजते हैं तो उसके ओर जाते हैं अपनी माताओं को समझ करके। माताएं जैसे रोहिणी है, जसोदा है, प्राय स्त्रियों के पांव में भी पैजनी होता है, नुपुर होता है, से आवाज भी आता है। अब ये परंपरा बंद हो गई है, लेकिन पहले स्त्रियां पहनती थीं पांव में, पुरुष भी पहनते थे। ऐसे जो विशेष करके नाचने वाले लोग तो पहनते ही हैं घुंघरू पांव में। नर्तक लोग पांव में घुंघरू बांध कर नाचते हैं। हमारे मंदिर में भी एक कांग्रीगेशन भक्त आते हैं, पांव में घुंघरू बांध नाचते हैं, बहुत सुंदर आवाज होता है। अब विशेष करके स्त्रियां जो पांव में नुपुर धारण करती हैं और चलती हैं तो उसका भी बहुत सुंदर आवाज आता है, बहुत मधुर आवाज आता है। तो यहाँ कृष्ण बलराम उन घुंघरुओं की आवाज से बहुत मोहित हो जाते थे। अन्य स्त्रियां भी पांव में घुंघरू बांधकर जब चलती थीं तो उनके पीछे पीछे कृष्ण बलराम भी चलने लगते थे। आज जब वो लोग पीछे मुड़ कर देखती थीं कि कृष्ण बलराम बहुत सुंदर जमीन पर सरीसृप की तरह, सर्प की तरह रेंग रहे हैं। सर्प कैसे रेंगता है? वैसे दोनों कीचड़ युक्त जमीन पर जहाँ गोबर और गोमूत्र से कीचड़ बन गया, वैसे कीचड़ में वो चलते थे। तो सरीसृपंत, सरीसृप की तरह। आप लोग सांप को देखे ना चलते हुए, जमीन पर ऐसे स्लिप करके चलता है, श्रीपंती जमीन पर से घिसीटते हुए चलता है। उसी तरह कीचड़ में कृष्ण बलराम के हाथ पांव जब धस जाते थे तो उस पर इसे घिसीट कर चलते थे। कीचड़ में बैलेंस नहीं होता है ना, उनका दोनों घुटना और पांव अंदर चला जाता था कीचड़ में। तो पर सरीसृपंत, सरीसृप माने सर्प की तरह फिसल कर चलते थे। यह दृश्य बहुत सुंदर लगता था और स्वयं कृष्ण बलराम को भी आनंद प्रदान करता था। ऐसे गोलोक में भगवान बाल लीला का आस्वादन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ करते हैं। विशेष करके ब्रज में भगवान इसीलिए आते हैं अपने बाल लीला का आस्वादन करने के लिए। जीव गोस्वामी कहते हैं कि गोलोक में भगवान का जन्म उत्सव नहीं होता है, बाल लीलाएं नहीं होती हैं, इसलिए विशेष करके ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में, गोकुल में आकर के भगवान अपनी बाल लीलाओं को करते हैं। और उन बाल लीलाओं को देखने के लिए देवता भी आते हैं। स्वयं शिव जी भी भगवान के बाल लीला को देखने के लिए आए थे, भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए शिव जी आए थे। तो माँ ने मना कर दिया था कि नहीं दर्शन कराऊंगा। नंदगांव में शिव जी आए थे भगवान के बाल लीला को देखने के लिए। माँ ने जब मना कर दिया था तो शिव जी बहुत निराश हो गए और कुछ दूरी पर आशा लगाकर बैठ गए कि शायद दर्शन हो आशेश्वर महादेव। बाद में कृष्ण देखे कि हमारे भक्त देवों में देव महादेव आए हैं तो कौतुक किए, रोने लगे, बहुत रोने लगे। सारे ब्रज पड़ोस की माताएं आ गईं, क्या हो गया? किसी ने कहा कि कोई आया था, किसी का नजर लग गया है। तो माँ जसोदा ने कहा कि एक जोगी आया था और बाल कृष्ण का दर्शन करना चाहता था। तो वृद्ध माताओं ने कहा कि वही नज़र लगा दिया है। तो गोपियों ने ढूंढ करके शिव जी को लाया, शिव जी दर्शन किए बाल कृष्ण का। बहुत मनोहारी भगवान की बाल लीलाएं हैं। स्वयं माँ यशोदा भी भगवान की उन बाल लीलाओं को कविता में बनाकर गान करते थे। स्वयं माँ यशोदा भी भगवान के बाल लीलाओं पर बहुत मुग्ध रहते थे और उन बाल लीलाओं को कवित्व में पोएट्री बना करके गाते थे। तानी आनी यानी गीतानी बाल चरितानी, अपने बच्चे के उन बाल लीलाओं को गाती थी माँ यशोदा भी। ऐसे सामान्य लोक में कोई स्त्री अपने बच्चे के क्रीड़ा को कविता बनाकर नहीं गाती है, माँ यशोदा गाती थी, क्योंकि कृष्ण कोई सामान्य शिशु नहीं थे और उनकी जो बाल लीलाएं भी कोई सामान्य नहीं थी। चलो बाल लीला में कितना बड़ा बड़ा असुरों का वध कर दिए, पुतना उधार, सट्टासुर, तृणावर्त, जमलार्जुन उधार, तो इन सब लीलाओं को माँ यशोदा पद में गीत बनाकर गाती थी। तद बाल चरितानिच, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इन बाल लीलाओं को सुनाने के क्रम में यह बता रहे हैं कि किस तरह से सहराम केशव, राम मतलब बलराम के साथ में श्री कृष्ण दोनों भाई किस तरह से नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं। नंद महाराज का कितना बड़ा भाग्य है कि जो जिनके शरीर में, जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड पलित होता है, भगवान के रोमकूप में जैसे रोए रोमावली है, रोमावली के नीचे एक छिद्र होता है जब पसीना आता है ना, तो भगवान के रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, उनके रोमावली से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उन ब्रह्मांड को धारण करते हैं। वही भगवान गोकुल में नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं या माँ यशोदा के अंक में पल रहे हैं। कल के श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भले ही अन्य लोग भवसागर से डर कर वेदों पुराणों तथा महाभारत की पूजा करें, किंतु मैं नंद महाराज की पूजा करूंगा। एक भक्त का भाव प्रभुपाद जी इसमें कोट करते हैं कि मैं तो नंद महाराज की पूजा करूंगा। क्यों क्यों पूजा करेंगे? कि अनंत ब्रह्मांड के पति श्री कृष्ण नंद महाराज के आश्रय में हैं, उनके देखरेख में पल रहे हैं, उनकी सुरक्षा में। जो सबको सुरक्षा प्रदान करता है, सबका भरण पोषण करता है, वो आज नंद महाराज के आश्रय में है, इसलिए मैं नंद महाराज की पूजा करूंगा। नंद महाराज कितने भाग्यशाली हैं जिनके आंगन में परब्रह्म रेंगते हैं। रेंगना रेंगना प्राय मनुष्य के लिए उपयोग नहीं होता है, सर्प सांप के लिए उपयुक्त होता है शब्द रेंगना। सांप की तरह रेंग रहे हैं जमीन में। तो नंद महाराज के आंगन में पर ब्रह्म रेंग रहे हैं। महाभागवत को कैवल्य अर्थात भगवान ब्रह्म ज्योति में समा जाना नरक के समान है, किंतु यहां पर मनुष्य नंद महाराज के आंगन में कृष्ण तथा बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करने से, भगवान की इन बाल लीलाओं का विशेष करके जब जमीन पर लौट रहे हैं ब्रज के धूली में, इसका चिंतन करने से ही ब्रह्म सुख ब्रह्म कैवल्य सुख से भी ज्यादा सुख है। इसका चिंतन करने से जो आनंद होता है उसके आगे कैवल्य जो है फीका है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी उसका चिंतन कर रहे हैं, का वर्णन करने में उनको भी आनंद आता है। और नंद महाराज यशोदा और पड़ोस की माताओं को भी आनंद आ रहा है, इसलिए ब्रज की स्त्रियां नंद महाराज के यहाँ जाती थीं कृष्ण के बाल लीला को देखने के लिए। उनके चलना, उनका चलना भी बहुत मधुर है, चलनम मधुरम हसनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बल्भाचार्य लिखते हैं भगवान का चलना भी लौटना भी समस्त आनंद का स्रोत मानो उड़ेल देता है। इसलिए लोग, ब्रजवासी लोग भी विशेष करके माताएं देखने के लिए जाती हैं, और कृष्ण को देखकर ही वो वात्सल्यमयी हो जाते थे, उनके स्तन में दूध आ जाते थे। कृष्ण के बाल कौतुक को देख करके माताओं के स्तन में भी दूध आ जाते थे। वो सोचती थी काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता। उनके मन में भी कृष्ण को गोद में लेकर स्तन पिलाने की ऐसी भावना जागृत हो जाती थी कृष्ण को देख करके। इसीलिए भगवान ने ब्रज में जितने भी वात्सल्यमयी माताएं थीं सबका स्तनपान किए, सबके मनोभाव को पूर्ण किए। कृष्ण को देखकर जो वात्सल्यमयी माताएं थीं उनके मन में भी भाव उत्पन्न होता था, उनके सौंदर्य माधुर्य को देख करके आकृष्ट हो जाती थीं और मन में सोचती थीं काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता। तो भगवान उनके मनोभाव को भी पुष्ट किए और ब्रह्म विमोहन लीला में उतने गोप बालक बन करके समस्त ब्रज की माताओं का स्तनपान किए, वात्सल्य सुख का आनंद लिए और उन माताओं को भी वात्सल्य सुख का आनंद प्रदान किए। भगवान ब्रज में आते हैं केवल आनंद लेने के लिए, और इसलिए वात्सल्य रस का आस्वादन वैकुंठ में नहीं होता है, गोलोक में नहीं होता है, तो ब्रज में आकर के वात्सल्य रस का स्वादन किए। भगवान हर रस के रसिक शेखर हैं, रसराज हैं, समस्त रसों का स्वादन करते हैं और कराते भी हैं, इसलिए वात्सल्य रस का स्वादन करने के लिए ब्रज में आते हैं और केवल आनंद लेते हैं ब्रज में। तो और गायों को भी आनंद प्रदान किए, गायों को भी बछड़े बनकर उनका स्तनपान किए, और ब्रज में जितने भी तीर्ण पीण पौधे उनके पत्ते को घास को भी चरे खाए, ब्रज भूमि को भी वृंदावन को समस्त ब्रजमंडल को भी सौभाग्य प्रदान किए। अपने बाल लीला से पौगन कैशोर लीला से ब्रज के तीर्ण लता पता को भी चरे बछड़े के रूप में और समग्र माताओं का स्तनपान किए। इसको स्वयं को भी आनंद आता है और दूसरे को भी आनंद प्रदान करते हैं। इस तरह से ब्रज में लौटते हुए ब्रजभूमि को पवित्र करते हैं। से रमण रहती, वृंदावन में रमण रहती है और गोकुल में भी रमण रहती है। तो रमण माने लौटना, रहती माने धूल में। भगवान ब्रज रज में लौटते हैं, जैसे नंद महाराज के आंगन में रेंग रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में जो मंदिर बनाया है तो प्रमुख डिटी कृष्ण बलराम हैं, जैसे यहाँ राधा रास बिहारी हैं, मुंबई में राधा रास बिहारी, क्योंकि मुंबई जो है फिल्म सिटी है, फिल्म उद्योग यहाँ चलता है, यहाँ लोग नृत्य करना गान करना, इसलिए भगवान नृत्यकार हैं रास बिहारी, इसलिए राधा रास बिहारी को यहाँ साबित किए रास परायण। और वृंदावन में रमण रेती में भगवान रमण किए, इसलिए वहां कृष्ण बलराम रमण रेती में हैं। रेती में हमेशा लौटते थे, इसलिए रमण रेती में कृष्ण बलराम हैं। और गोकुल में भी रमण रेती है, इसमें रमण करते हैं। भगवान का ब्रज रस से बहुत संबंध है, इसलिए ब्रज रज को लौट करके वृंदावन के सौभाग्य का वर्धन किए। वेणु गीत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक सखी कहती है, हे सखी, ये वृंदावन का कितना बड़ा सौभाग्य है जिस ब्रज रज में कृष्ण लौट रहे हैं, चल रहे हैं, सरीसृप तो सर्प की तरह लौट रहे हैं। वृंदावने सखी भुवो बितनोति कीर्ति, वृंदावन का कितना बड़ा सौभाग्य है, मानो समग्र पृथ्वी के सौभाग्य का वर्धन करने वाला है। वृंदावने सखी भुवो बितनोति कीर्ति, भुवो मनीष भूमि का, इस भूमि का सौभाग्य कितना बड़ा है कि राम और कृष्ण, यद राम कृष्ण, कृष्ण और बलराम इस भूमि में लौट रहे हैं। वृंदावने सखी भुवो बितनोति कीर्ति, इस पृथ्वी के सौभाग्य को बढ़ा रहे हैं। नंगे पांव चल रहे हैं, इसमें लौट रहे हैं, खेल रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं। सो सुखदेव गोस्वामी उसका ध्यान कर रहे हैं और परीक्षित महाराज भी भगवान की उन बाल लीलाओं को बहुत एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं। उनकी माताएं ही नहीं, अतः वे अपनी असली माताओं के, इस तरह कृष्ण तथा बलराम का रेंगना पड़ोस के लोगों के साथ साथ माता यशोदा तथा रोहिणी और दोनों बालकों को भी आनंद प्रदान करता है। भगवान का लौटना रेंगना पड़ोसी माताओं को भी आनंद प्रदान करता है, इसलिए पड़ोस की माताएं भी आती थीं। आसपास की माताएं नंद महाराज के यहाँ आती थीं दर्शन करने के लिए, उस बच्चे के चलने लौटने खाने, हर कौतुकमय है। भगवान का खाना भी कौतुकमय है, उनका पीना भी बहुत कौतुकमय है। कहीं के माँ यशोदा दूध पिलाती हैं और दूध नहीं पीते हैं तो माँ कहती कि दूध पियोगे तभी मजबूत रहोगे। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं इतना दिन से दूध पी रहा लेकिन फिर भी बलराम से कमजोर हूँ। तो माँ कहती कि अब दूध ज़्यादा पियो। माँ इस तरह से बलराम कृष्ण को दूध ज़्यादा पिला रही हैं। कभी कभी माँ कहती कि दूध, कृष्ण कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरी चोटी बलराम से छोटी है। सीखा तो माँ कहते कि तुम दूध नहीं पीते हो इसलिए तुम्हारी चोटी नहीं बढ़ रही है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो एक दिन बलराम जी पूछे कि तुम कहती हो कि दूध पियोगे तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, बलराम से ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, लेकिन मैं तो बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ फिर भी बलराम से हमारी चोटी जो है छोटी है। कितनी बार मोहि दूध पियती है, तबहू अजहू से छोटी मैया कबही बढ़ेगी छोटी, सूरदास जी लिखते हैं। सूरदास बलराम, कृष्ण बलराम के बाल लीलाओं का दसम स्कंध में इन बाल लीलाओं का अक्षरशः वर्णन करते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे लेकिन भगवान की बाल लीलाओं का अपना कविता में बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, जैसा भागवत में है वैसा ही। तो बोलते हैं कि कृष्ण कहे कि मैं तो बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, तबहू अजहू से छोटी, अज मने बलराम, फिर भी बलराम से मेरी छोटी छोटी है। इस तरह से बहुत कौतुक करते थे। कभी कभी कृष्ण कहते थे कि माँ मुझे चौंद खिलौना दे दो, चांद खिलौना चाहिए, जिद करते थे। भगवान की बाल लीलाएं बहुत सुंदर है, बहुत मनोहारी, नहीं मुझे वो खिलौना चाहिए। तो माँ बहुत पसोपस में पड़ जाती थी, चांद कहाँ से लाना है। कृष्ण हट करते थे, मुझे चांद खिलौना चाहिए। तो माँ को एक उपाय सूझा, पानी परात में भरकर बोलती देखो इसमें ये चांद खिलौना है। पानी में चांद प्रतिबिंब होता है, चांद दिखाई देता है ना पानी में, बोलती है ले लो चांद खिलौना। इन बाल लीलाओं का सुखदेव गोस्वामी स्वयं भी आनंद ले रहे हैं और परीक्षित महाराज भी उसमें तन्मय होकर सुन रहे हैं कि भगवान सामान्य शिशु की तरह, सामान्य बच्चे की तरह चल रहे हैं। कभी कभी पड़ोसी माताओं के पीछे जाने लगते हैं, उनके पांव के नुपुर के मधुर झंकार को सुनकर आकृष्ट हो जाते थे तो उधर चल देते थे। अब कुछ चलने के बाद जब देखते थे कि अपनी माताएं नहीं, तो भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे। जब कोई बच्चा हो अब कोई बाहरी आदमी उसको लेने के, तो बच्चे डर जाते हैं, भागने लगते हैं। बच्चों को भी मालूम है कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये हमारी माँ नहीं है। तो ऐसे बाल कौतुक लीलाएं करते थे जो काल को भी डराने वाले। स्त्रियों से डर जाते थे, बाहरी स्त्रियों को देखकर भाग जाते थे, अपनी माता की ओर आते थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण तथा बलराम कभी कभी किसी के पीछे चलने लगते थे और बाद में जब वे माताएं मुड़ कर देखती थीं तो समझ जाते थे कि हमारी माताएं नहीं है। तो डर करके भीतवत मुग्ध प्रभीतवत प्रभीतवत प्रकृष्ट रूपे न भीत, मने बहुत डर जाते थे, इसलिए प्रभीतवत। कई बच्चे मंदिर में भी हम लोग देखे हैं, किसी का बच्चा खेल, अगर कोई दूसरा जाते तो डर जाते हैं, भागने लगते हैं। किसी दूसरे के बच्चे को गोद में तो रोने लगते हैं, वो जानते हैं कि अपना आदमी नहीं है। तो कृष्ण बलराम भी ऐसे ही बाल चपल लीलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई दूसरा उनके तरफ आता है तो भागने लगते हैं। तो दूसरी माताओं को, पड़ोस की माताओं को देखकर वो लोग भयभीत होकर अपनी माँ की ओर भागने लगते हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत बारीकी से, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से कृष्ण बलराम के उन लीलाओं को लिख रहे हैं। तन्नाद हृष्ट मनसा अनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीतवत उपयतुर अंतिमात्रो। जो भगवान की लीलाएं हैं, तन्नाद हृष्ट उन घुघुनों की आवाज से हृष्ट मनुष्य अत्यंत प्रसन्न हो करके, उनके पांव में जो घुंघरू बजते थे उससे स्वयं भी आनंदित होते थे, या अन्य माताओं के पांव में भी जो घुंघरू बजता था तो उस आवाज से भी आकृष्ट होकर उनको उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। अनुसृत्य पीछे पीछे चलने लगते थे, जब जानते थे कि अरे कोई बाहरी आदमी है तो प्रभीतवत भयभीत होकर भागने लगते थे। तो भगवान के ये इस तरह से एक कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, जबकि उनको भय की क्या आवश्यकता है, लेकिन बाल सुलभ लीलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे एक सामान्य बच्चा करता है। कभी मिट्टी खाने लगते थे, या बाल लीला में भगवान मिट्टी खाने लगे तो ग्वाल बाल माँ से शिकायत किए कि मिट्टी खा रहा है। माँ उनको डांटती है, ब्रजवासी लोग ग्वाल बाल विशेषकर बलराम जी कह कि माँ कृष्ण मिट्टी खाए हैं, तो माँ मुंह खोलकर देखती है भगवान के छोटे मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देती। कृष्ण कहे कि ब्रजवासी ग्वाल बाल कहे कि तेरे लाला ने मिट्टी खाई जसोदा सुनमाई, जसोदा माई तुम्हारा लाला आज मिट्टी खाया है। तो माँ ने कृष्ण को बुला कर कहा तुम्हें मिट्टी खाए हो, तो कृष्ण उस मिट्टी को निगल गए, अंदर खा गए। माँ जसोदा ने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, मुख में ही ब्रह्मांड दिखाई दिया। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के तावंग ऋजुग्मम अनुष्कृत्य सरी श्रीपंत, जब बच्चे बहुत कम उम्र के होते हैं तो चल नहीं पाते हैं, जब चलना प्रारंभ करने से पहले घुटनों और पांव के बल चलते हैं, जुग्म माने दोनों घुटनों के बल से और दोनों हाथों के बल से। तावंग ऋजुग्मम अनुकृष्य सरी श्रीपंत होश प्रघोष रुचिरम ब्रजकर दमेशु, दोनों घुटनों और दोनों पांव के बल पर कृष्ण बलराम रेंग रहे हैं। उनके रेंगने से उनके पांव के घुंघरू का आवाज बहुत मनोहारी उत्पन्न हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर आवाज कर रहा है। भगवान का हर चीज उनका पांव में है, चाहे जो भी केस है या दांत है या वक्षस्थल पर, सब कुछ दिव्य हो जाता है। भगवान के शरीर से स्पर्श होकर और दिव्य हो जाता है। सामान्य नूपुर ऐसा आवाज नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान के संग से, भगवान के शरीर से लग करके और सुंदर हो जाता है। प्राकृत वस्तु भी, भौतिक वस्तु भी भगवान के संसर्ग से और सुंदर और मधुर हो जाता है। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, जैसे मणि के संसर्ग से कांच भी मणि जैसा प्रतीत होता है, वैसे सामान्य वस्तु भी, सामान्य जंगल का वनमाला भी बहुत सुंदर हो जाता है स्पर्श होने से। मयूर पंख भी स्पर्श होने से और सुंदर हो जाता है। भगवान सुंदरता के आगार हैं, सौंदर्य के सागर हैं, और उनके संपर्क में जो भी वस्तु आता है वो अत्यंत मधुर और मुखरित हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो नूपुर बहुत सुंदर था, बहुत आवाज कर, नहीं, वो भगवान के शरीर के, उनके पांव के स्पर्श से इतना मनोहारी हो गया था, इतना मधुर बजता था कि लोग आकृष्ट हो जाते थे। से भगवान श्री राम के चरण रज से, रज तो हर जगह है, इन भगवान श्री राम के चरण में जो रज लगा था वो रज पत्थर पर गिरा तो अहल्या का उद्धार हो गया। जो गौतम के अभिशप्त से गौतम नारी जो पाषाण बन गई थी, भगवान राम के चरण रज से मुक्त हो गई। तो रज की विशेषता नहीं है, विशेषता है भगवान के चरण की। उसी तरह नूपुर की विशेषता नहीं है, विशेषता है भगवान के चरण कमल की। उनके चरण में नूपुर का स्पर्श होने से और मधुर और मुखरित हो गया है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के हाथ में जो भी, उनके हाथ में बलय हैं, कंगन है, तो और सुंदर हो जाता है। मणिना बलयम बलये न मणि, मणिना भूषितम बलये न कर। हाथ से जैसे सामान्य लोग मणि कंगन पहनते हैं तो हाथ सुंदर लगता है और कंगन की भी शोभा बढ़ जाती है। मणिना हाथ से कंगन की शोभा होती है और कंगन से हाथ की शोभा होती है। आकाश से चंद्रमा की शोभा बढ़ती है और चंद्रमा से आकाश शोभा बढ़ती है। शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभ। जैसे रात्रि में चंद्रमा हो तो चंद्रमा से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है और रात्रि से चंद्रमा की शोभा बढ़ती है और चंद्रमा से रात्रि की शोभा बढ़, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रात्रि ना हो तो दिन में चंद्रमा की शोभा नहीं होती है, दिन में भी चांद दिखाई देता है लेकिन वो निस्तेज रहता है, प्रकाशहीन रहता है, दिन में उसकी सुंदरता नहीं रहती है। चंद्रमा की जैसे रात्रि में सुंदरता बढ़ जाती है और चंद्रमा से रात्रि की भी सुंदरता बढ़ जाए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, भगवान नग्न भी हैं, बिना वस्त्र के हैं तो भी सुंदर हैं, बिना श्रृंगार के हैं तो भी सुंदर लगते हैं, लेकिन श्रृंगार की वस्तु सुंदर हो जाती है भगवान के संपर्क से। भगवान का ऐसा नहीं कि बहुत श्रृंगार कर दिए, ये कर दिए तब सुंदर लगेंगे, नहीं, बल्कि श्रृंगार के जो उपादान हैं वो सुंदर हो जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान के पांव में नूपुर होने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, वो बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत सुंदर आवाज आ रहा है। तो बहुत सुंदर घोषा प्रघोष रुचिरम, उन घुघरुओं की आवाज मन को अत्यंत आकृष्ट कर रही है। उन घुंघरुओं से आवाज करते जो अत्यंत मधुर थी, बहुत मधुर आवाज हो रहा है। ये भौतिक जगत की आवाज से अलग है, इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी भी उसका वर्णन करने में आनंद का अनुभव करते हैं। और वहाँ के हर वस्तु, यहाँ तक कि वहाँ भूमि भी आकर्षित हो जाती है आवाज सुनकर, स्पंदन से। भगवान के चरण जहाँ पड़ता है वहाँ का भूमि भी पवित्र हो जाती है, पुण्यमयी हो जाती है। ब्रज भूमि को भी जो पुण्य और पवित्र बनाता है, जय ब्रज भूमि बनावल पावन, जो समस्त ब्रजमंडल को अपने चरण से, अपने शरीर से रेंग करके जो पवित्र बना दिया है। तो भगवान का ये सब जो लीलाएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, भगवान यद्यपि कीचड़ में लिपटे हुए हैं, गाय के गोबर और गोमूत्र से जो कीचड़ उत्पन्न उसमें सने हुए हैं, फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, कोई प्रश्न है? ठीक है, मन करते हाँ पूछिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मधुर लेक्चर दिया। तो महाराज जी, आप बता रहे थे कि हर वस्तु जो होती है कृष्ण के संपर्क से आके वो वस्तु की भी शोभा बढ़ जाती है। तो ऐसा सुना है मैंने कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जड़ नहीं होती। तो जो घुंघरू है, जो भी पायल भी है,
वृंदावन में भी जो भी वस्तु है सब चिन्मय है, आध्यात्मिक है, उसका भी स्वरूप है, पर्सनिफिकेशन है, वो भी उसका इंडिविजुअल एक चैतन्य स्वरूप है, जीवंत है, वो भी बोलता है, बात करता है। जैसे रामायण में वर्णन है कि जब सीता जी वन गमन जाने के लिए तैयारी कर रही थी, अब माँ कौशल्या के पास गई आशीर्वाद लेने के लिए, तो माँ से आशीर्वाद लेकर के आज्ञा चाहती थी कि मुझे भी वन जाने के लिए आदेश दीजिए, तो जमीन पर अपना पांव, अपना अंगूठा ऐसे कर रही थी। कभी कभी जमीन अंगूठे से पांव को लोग खुरते हैं ना, तो उनके पांव में नूपुर बज रहा था। तो वहाँ वर्णन किया गया है कि मानो नूपुर कह रहा था कि हे सीते, आप वन में जाना तो मुझे छोड़कर मत जाना, कि वन में जाओगी तो हो सकता है कि आभूषण घर में रख दोगी, ये मुझे छोड़कर मत जाना। वो भी जीवंत है, वो भी चैतन्य है। तो नूपुर कह रहा है कि हे सीते, आप तो वन में जाओगी लेकिन मुझे यहाँ अपने पाँव से निकाल कर मत जाना। तो आध्यात्मिक जगत में वो भी भगवान के संपर्क में जो भी वस्तु जड़ भी चैतन्य हो जाता है, जीवंत तो हो जाता है, वो भी बोलता है, सुनता है। पहाड़ भी, पत्थर भी, सब कुछ चैतन्य है, क्योंकि भगवान के संपर्क से। इसलिए वो नूपुर भी बहुत मधुर वर्णन कर रहा है, मधुर गान कर रहा है। इसीलिए तो पड़ोस की माताएं, यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी भी उस मधुरता पर आकृष्ट हो गए हैं, माधुर्य पर, क्योंकि आध्यात्मिक वो भी भगवान के पांव में है, तो भगवान के शरीर में लगते ही वो चिन्मय हो जाता है, सच्चित आनंदमय स्वरूप हो जाता है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।